ओम शांति। न चले तो लाल ही जला देंगे। बस ठीक है। आज की मुरली में एक सबसे सुंदर बात सदा याद रखने वाली, सबसे पहले कौन बताएगा हाथ उठाओ बोलो। नहीं नहीं नहीं, हाँ सुशील ने बताया। गुह्य बात, सृष्टि का सबसे सुंदर रहस्य, जो आत्माएं अगर हम अशरीरी होंगे तो क्या करेंगे? संसार को शांति का दान देंगे, और सुखों का दान देना है तो सदर्शन चक्र, जिसको आजकल बाबा पांच स्वरूपों का अभ्यास कहते हैं। दोनों गुह्य बातें हैं। अशरीरीपन की बात तो हम जानते हैं, देह से न्यारे होते ही हम स्वयं शांति के अनुभव में हो जाएंगे और हमसे शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, संसार में जाएंगे। वो जितना डीप गहरा देह से न्यारापन होगा उतना ही उतनी ही गहरी शांति होगी। सदर्शन चक्र घुमाने से संसार को सुख मिलेगा। कैसे? ये बात है बहुत गुह्य। सुख मिलेगा संसार को। सीधा सा उत्तर यही है कि हम स्वयं अतिंद्रिय सुख में आ जाएंगे। इसको ज्ञान चिंतन का सुख कहें या पांचों स्वरूप के अभ्यास का सुख, हमें स्वयं को बहुत सुख भासने लगेगा। और हम कौन हैं? सृष्टि के, हाँ और बोलो, आधार मूर्त, मास्टर बीज रूप, कल्प वृक्ष की जड़ें। हमारी स्थिति सारे कल्प वृक्ष तक पहुंचती है। हमें जितना गहरा सुख मिलेगा वो सुख सारे कल्प वृक्ष में फैलेगा। तो इन दोनों बातों पर हमें बहुत ध्यान देना है, सवेरे विशेष रूप से लेकिन शाम को भी। दोनों समय संसार में सृष्टि में शांति के होते हैं। भारतीय शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है, बाबा ने भी बता दी कि श्याम को क्या होता है, देवता चक्र लगाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। कौन है वो देवता? कौन घूमने जाते हैं नक्की के चारों ओर? देवता क्या करेंगे घूम के? वो तो पुष्प के विमानों में रहते हैं, वो ज्यादा घूमते नहीं, पैदल नहीं चलेंगे ज्यादा। हम सब फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं जब घूमते हैं अपनी स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति में, तो संसार में सुखों की तरंगे फैलने लगती हैं। सब इसका विशेष अभ्यास करेंगे, अपने लिए भी और विश्व कल्याण के लिए भी। अब हम पहले चर्चा करते हैं यज्ञ सेवा की। सभी आप यज्ञ सेवा में आए हैं, जो समर्पित हैं उनका जीवन सेवाओं के लिए भी है और स्व उन्नति के लिए भी है। यज्ञ सेवा छोटी चीज है, बहुत बड़ी छोटी नहीं है, समझती है ना माताएं? इसलिए तो समय निकाल कर आए हैं। हमारी यज्ञ सेवा ने इतना बड़ा काम किया कि लोग मंदिर गुरुद्वारों में सेवाएं करने लगे। जूते साफ करते हैं अच्छे अच्छे सिख साहूकार घरों के, सेवा भाव जागृत हो गया। बाबा हमेशा कहते हैं, आपने एक बात कभी बाबा की मुरलियों में सुनी हो, ब्रह्मा बाबा सबसे पहले फरिश्ते बन गए। क्यों? हड्डियां कहां गई? हड्डियां यज्ञ सेवा में लगा दी। तो मुरली ऐसा कार में ये रिपीट होकर आती रही है, तुम भी यदि यज्ञ सेवा में हड्डियां लगा दोगे तो फरिश्ते बन जाओगे। यज्ञ सेवा मन इच्छित फल देने वाली है। मुरली है बहुत सुंदर, मुझे याद रहती है, दादी ने यहीं बैठ के सुनाई है, छोटे हॉल में सुनाई है कई बार। यज्ञ सेवा तुम्हें मन इच्छित फल देती है। यज्ञ हमारा संपूर्ण यज्ञ है, एक ये यज्ञ जहाँ हम सब बैठे हैं, हमारे सेवा केंद्र भी यज्ञ के हिस्से, और ये विश्वव्यापी यज्ञ जिससे संसार के परिवर्तन का काम हो रहा है, हर ब्राह्मण उस यज्ञ का घोड़ा हो गया, हम सब उसकी सेवा कर रहे हैं। गीता में बहुत अच्छे शब्द हैं, आप में से किसी ने नहीं पढ़ी होगी गीता, ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्सो, इस यज्ञ से तुम देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें मन इच्छित भोग प्रदान करेंगे। बिल्कुल यही की बात है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ रचकर शिव बाबा ने हम ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया, पवित्र आत्माओं के हाथों में, और कहा इससे तुम किन्हें प्रसन्न करो। यज्ञ सेवा क्या है, आप सेवा किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए नहीं, जो देव कुल की आत्माएं यहाँ आ रही हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ही आप भोजन खिला रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कोई और कोई व्यवस्था कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ना। देवता प्रसन्न होंगे, देव कुल की आत्माएं, तो मन इच्छित फल देंगे ना, मन इच्छित फल हमें प्राप्त होगा। तो इस सेवा का बहुत महत्व है, यज्ञ सेवा जो आत्माएं सच्चे दिल से करते हैं, जो निष्काम भाव से करते हैं, उन्हें ये यज्ञ सचमुच मन इच्छित फल प्रदान करता है। यज्ञ सेवा का बड़ा महत्व है। द्वापर युग से बाहर सेठ लोग, राजा लोग यज्ञ रचते आए, अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा माना जाता था, उसके बाद भी बहुत सारे यज्ञ प्रचलित रहे, भिन्न भिन्न तरह की कामनाओं को पूर्ण कराने के लिए, उसमें लोग सेवा करते थे। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, याद है किसी को क्या किया था, युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में श्री कृष्ण ने क्या ड्यूटी ली थी, जूठे पत्तल उठाने की, पैर धोने की तो वो अलग थी, वो तो श्री कृष्ण की पूजा हुई थी, उन्होंने ड्यूटी ली थी झूठी पत्तले उठाने की। क्या दिखाया, ये सेवा भाव, इसमें छोटापन जो महसूस करते हैं कि यज्ञ सेवा, अरे तो छोटा सा काम है, ये हम करें लज्जा की बात है, इधर उधर देखने लगे कोई देख तो नहीं रहा। तो यज्ञ सेवा का फल समाप्त हो जाता है, तो हमें चारों ओर ये लहर भी फैलानी है कि यज्ञ सेवा बहुत बड़ी चीज है। मौज करना यहाँ तो क्या होगा, जन्म जन्म की मौज चली जाएगी। कुछ सोचते हैं यहाँ हम जिस तरह अच्छी तरह रहेंगे, सतयुग में भी उसी तरह अच्छी तरह रहेंगे, ये मान्यता संपूर्ण रूप से गलत है। यहाँ जो यज्ञ सेवा बहुत करेंगे, जन्म जन्म उनकी सेवा होगी, जो यहाँ सेवा नहीं करेंगे उन्हें वहाँ सेवा करनी पड़ेगी। ये रहस्य बाबा पहले ही बता चुके हैं। दूसरी एक चीज है, यज्ञ में जो हम भोजन खाते हैं, यज्ञ में जो हमारी पालना हो रही है, वो कहाँ से आ रहा है पैसा, सब जानते हैं ना, आप भी देते हैं ना, आप यज्ञ में तन मन धन देते हैं, आपका पुण्य जमा होता है, उस धन से यज्ञ निवासियों की, हम सब की पालना होती है। अगर हम सेवा न करें तो क्या होगा, बोलो, बहुत बड़ा बोझ, भारी होगा, और उस बोझ का प्रत्यक्ष स्वरूप होगा योग नहीं लगेगा, खुशी नहीं होगी, व्यर्थ बातों में समय जाएगा, अपने को बाहर से संतुष्ट रखेंगे, पर आंतरिक संतोष, आंतरिक खुशी, आंतरिक बल आत्मा को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम यज्ञ में आए हैं, यज्ञ सेवा करें दिल से। कोई बुजुर्ग भी है वो भी बहुत सेवा कर सकते हैं, जिसे सेवा करने का आनंद आ गया हो, जिसे सेवा करने का महत्व तो समझ में आ गया हो, वो ये नहीं सोचते हम बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, थक जाएंगे, वो तो करेंगे ही। ठीक बात है या नहीं? हम देखते हैं टेलरिंग में हमारे कई बुजुर्ग भाई आते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, और भी कई सेवाओं में हमारे बुजुर्ग लोग, कोई रात को पहरा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यज्ञ के प्रति प्रेम दर्शाता है ना हमारी सेवा। बाबा से प्यार माना, बाबा के यज्ञ से प्यार, ये भी भगवान वाच है। तो हम सेवाओं पर बहुत ध्यान दें। अगर कोई सेवा नहीं करता तो उसे देखकर हम भी न करें, ये ज्ञान है या अज्ञान? ये अज्ञान हो गया भाई, ये भी सेवा नहीं कर रहा, रहता बड़ा मौज से है, सेवा कुछ नहीं करता, शायद यही यज्ञ का सिस्टम है, न करने वाले मौज से रहते हैं। वो मौज नहीं है जो हमें चाहिए। मौज खाने पीने से थोड़ा ही मिलती है, मौज सोने से थोड़ा ही मिलती है, सो के तो लोग डल हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? ज्यादा सोने वाले तो बीमार होंगे। इसलिए हम यज्ञ सेवा को महत्व दे। बाबा कहा करते थे, तन यज्ञ सेवा में लगाएंगे तो तन का सुख मिलेगा, जन्म जन्म। धन यज्ञ सेवा में सफल करेंगे क्या होगा माताएं? अनुभव बताओ। बोल नहीं रही माताएं, लगाती नहीं पैसा? नहीं लगाती? लगाती तो हैं, लगाती है, क्या मिलेगा? मिलेगा या नहीं? इस लालच से लगाते हैं कि बहुत माल मिलेगा। यज्ञ हमारा है, किसका है यज्ञ? हमारा है, और हमारा कर्तव्य है यज्ञ को हर तरह से सफल करना, जिस तरह का भी सहयोग उसमें चाहिए हम लगाते हैं। लगाते हैं या नहीं? और भगवान के कार्य में सहयोग करना अर्थात, बोलो गुये बात, बोलो चेयरमैन सब, भगवान के कार्य में सहयोग करना माना, अब जो हाँ जन्म जन्म उसका सहयोग जीत लेना। देखो अब भी उसके सहयोग की जरूरत पड़ती है, पड़ती है या नहीं? सबको पड़ती है, उसके सहयोग के बिना हम कर नहीं सकते। मैं उस दिन से देख रहा था, बाबा ने मुरली में 2 मास का होमवर्क दिया था ना, याद है सबको? है, चल रहा है, स्वराज अधिकारी, व्यर्थ से मुक्त, फरिश्ता। तो बाबा ने कहा था ना इनाम देंगे, मैंने उस दिन भी सुनाया था कि कई पास बैठने वाले कह रहे थे ना बहुत इनाम इकट्ठे हो गए, दिया तो कुछ नहीं बाबा ने, पर देता है। कई लोग मुझे अनुभव सुना चुके, उस दिन से थोड़ा अमृत वेला अच्छा करने का जो संकल्प किया तो अमृत वेला पावरफुल हो गया, ये इनाम है ना उसका। हमें कोई बीमारी हो जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं कुछ और अनहोनी बात हो जाए, उसका सहयोग होगा तो फटाफट पार हो जाएंगे ना, उसका सहयोग नहीं होगा तो जरा सा चुभा हुआ कांटा भयानक रोग में बदल सकता है। विनाश काल आएगा, उसके सहयोग की आत्माओं को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, द्वापर से भी इतनी नहीं पड़ेगी, विनाश काल में जितनी पड़ेगी, जब पानी नहीं मिलेगा लोगों को, जब अन्न नहीं मिलेगा, जब प्रकृति तूफान मचाएगी, जीना मुश्किल कर देगी। हम जरा कल्पना करें, आज तेज बारिश होने लगे, तूफान चलने लगे, यहाँ तक कोई क्लास में भी आ पाएगा? कमरे से क्लास तक भी नहीं आ पाएंगे, ऐसे तूफान होंगे, अर्थक्वेक्स होंगी, सुनामी आएंगी कि मनुष्यों का जीना मुश्किल हो जाएगा। बाबा के सहयोग की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, और फिर द्वापर के बाद। जब हमारा उससे नाता नहीं होगा, हम अनजाने में भी उसे पुकारेंगे मदद करो। तो जिन्होंने संगम युग पर मदद की है उसे मदद मिलती रहेगी। इस सत्य को जानकर हम यज्ञ सेवा पर ध्यान दें। यज्ञ हमारा, सेवाएं हमारी, नौकरी नहीं है। जिसको नौकरी समझते हैं, बाबा साकार में कहा करते थे, लोग घड़ी दिखाते थे, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं तो चला, अब मैं काम नहीं करूंगा। बाबा कहते ये किसका संस्कार है? नौकरों का। ये मालिकों का संस्कार नहीं होता। घर में आप मालिक हो, माताएं अपने, कोई मेहमान आ जाए, आप कहेंगे मेरा तो टाइम हो गया, मैं तो चली, कहेंगे? घर में कहा जाता है ऐसा? तो जो घर समझते हैं यज्ञ को, वो ये सब नहीं सोचेंगे। चलो अब बाबा की याद में उसको छत्र छाया बना लें अपने। कर मुझे एक कुमार का अनुभव याद आ गया, वो आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा। पहले यज्ञ सेवा पर और थोड़ी सी बात। धन से यज्ञ सेवा करने से क्या मिलेगा? धन का सुख। मन से वाइब्रेशंस फैलाने वाले को जगा दो। माता जी को ज्यादा गहरी नींद में सो गई, जग जाओ, जगो जगो। सुख मिलता है हमें यज्ञ सेवा का, लेकिन बहुत ज्यादा सुख उसको मिलता है, मदद मिलती है जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। हम कुछ लोगों को देखते रहते हैं, नीचे हमने देखा किसी व्यक्ति को सेवा करने के पीछे कामनाएं बहुत हैं। क्या कामना होती है मनुष्य को सेवा के पीछे? मान की कामना एक ही है, और क्या चाहिए लोगों को? सबसे बड़ी कामना मान की कामना। अब मैं साक्षी होके देखता रहता हूँ, उसे लोग मान नहीं दे रहे हैं, तो वो परेशान है, उसके चेहरे की हवा उड़ी हुई है। मैं देखता रहता हूँ उसे कि इस व्यक्ति को कितनी प्यास है, मुझे सबसे ज्यादा मान मिलना चाहिए, स्टेज पे सबसे पहले मुझे बुलाना चाहिए, दादियों के आगे मैं बैठूं, और अगर ऐसा मौका न मिले तो उसे सुख नहीं मिल रहा है। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात है, बहुतों के साथ ये नहीं है। अब आप लोगों को क्या मान की कामना होगी सेवा करने वाले? है किसी को? सब सेवाधारी हैं, किसी को इच्छा नहीं कि हमारा बहुत सम्मान हो, हमने यज्ञ सेवा की है। तो ये मान की कामना मनुष्य को सेवा के सुख से दूर ले चलती है। कभी भी ध्यान रखना, आप जीवन में बड़े बन जाएं, आप बहुत नाम मान को प्राप्त करें, मान मिलता है जो अच्छी सेवाएं करते हैं। देखो, मैं अपनी बात करूं, मुझे बहुत मिलता है, लेकिन क्या सिखाया बाबा ने? वही हमने सीखा बाबा से। अच्छे काम करने वालों को मान तो मिलेगा ही ना। आपने कोई भी सेवा अच्छी की, लोग कहेंगे बहुत अच्छी की भाई, लेकिन हमें क्या करना? हाँ, उसको बाबा की तरफ भेज देना है ना, ऊपर ट्रांसफर कर दो, समर्पित करो साथ साथ। उस मान को पाकर हम फूल न जाएं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हम में बहुत गुण है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये सब आ जाना माना हमारी रूहानियत समाप्त हो जाती है। इसको निष्काम भाव कहते हैं। कर्म करो, बहुत सेवाएं करो और प्रभु अर्पित। भक्ति में भी ये मान्यता चली आती है, प्रभु अर्पित करो। देखो कैसे संसार का खेल बिगड़ा, लोग यात्रियों के लिए धर्मशाला बनाते थे, बिल्कुल निष्काम भाव से राजा बनवा देते थे, दो चार धर्मशालाएं। फिर आगे चले, समय बीता, सेठ लोग बनवाने लगे धर्मशालाएं। फिर आगे चले, सेठ लोग अपना नाम लिखाने लगे। फिर आगे चले, सेठ लोग थोड़ा थोड़ा चार्ज लेने लगे, भाई एक एक रुपया ले लो हर एक से, मेंटेनेंस पे खर्च होता है धर्मशाला में। फिर आगे चले, पिछले 50-100 सालों में क्या हुआ? धर्मशालाएं बंद हो गई और क्या हो गया? होटल बन गए कमाई का साधन, मंदिर बनवाने लगे। आज मंदिर क्या हो गए? कमाई का साधन हो गए या नहीं हो गए? हॉस्पिटल लोग बनवाते थे सुख देने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, आज किस लिए? पैसा कमाने के लिए। कॉलेज बन गए, कॉलेज क्यों खोलते हैं आजकल लोग? पैसा कमाने के लिए, बिजनेस हो गया ये। तो ये गिरावट है समाज में, ये गिरावट है कि हर श्रेष्ठ कर्म के पीछे एक बड़ी कामना हो गई, और कलयुग के अंत में मान के अलावा दूसरी कामना रह गई, धन। धन ही सब कुछ है, हर कर्म के पीछे धन मिल रहा हो तो ठीक, नहीं तो नहीं, करना नहीं है। हम इन चीजों से अपने को मुक्त रखेंगे, और इसके लिए याद रखेंगे कितने बड़े आदमी हम बन जाएं आगे चल के, जो कुछ हमारे पास है वो सब है प्रभु देन। पांडवों की ये कहानी हम याद रखेंगे। पांडवों को एंड में बहुत अच्छी तरह महसूस हो गया कि तुम्हारे साथ श्री कृष्ण की शक्तियां काम कर रही थी। उसके जाते ही अर्जुन के बाणों में ताकत नहीं रही, भीम की भुजाओं में बल नहीं रहा, युधिष्ठिर के पास धर्म की शक्ति नहीं रही। महसूस हुआ उन्हें कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है श्री कृष्ण के जाते ही, तो उन्होंने भी तय किया तुम भी चलो अंतिम यात्रा पर। ये सत्य हम सब के लिए है। हमारे साथ क्या काम कर रहा है? बाबा की शक्तियां, नहीं तो हम पवित्र बनने का साहस भी न रख पाते, हम ज्ञान देने का साहस न रख पाते। हम ये कैसे कह सकते थे हम विश्व का कल्याण करेंगे? सोचो हम क्या कह रहे हैं, विश्व का कल्याण। लोग सुने तो शायद मजाक करें हमारी, विश्व का कल्याण करने चले हैं ये लोग, कितनी बड़ी बात है या नहीं? लेकिन ये ताकत किसने दी कहने की? तो हमारे साथ ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता होती है, मैं रोज महसूस करता हूँ। आज मैं नीचे था, वो कल स्टूडियो की ओपनिंग हुई ना, तो मुझे कहा आज आपको ओपनिंग करनी, कैसे रिकॉर्डिंग करके शुरुआत आप कर दो। तो मैं नीचे गया, अब उनका कुछ कुछ खराब, आज पहला ही तो दिन था, ये नहीं है वो नहीं है। पहले कहा 9 बजे आ जाओ, फिर कहा 10 बजे आ जाओ, 10 बजे गए, देखा वहां हो ही नहीं रहा, फ्यूज उड़ गया है कुछ कुछ। मुझे एक लेख लिखना था, मैं अपने कमरे में आ गया, मैं सोचा एक पेज तो लिख दूं, फिर चालू हो जाएगा तो कर दूंगा। मैंने देखा, यह अनुभव छोटा सा सुना रहा हूं आपको, मैंने बाबा का आह्वान किया, मैं सोचा ये लेख मैं पूरा ही करके मीडिया वालों को दे के ही जाऊं, बाबा ऐसा कुछ कर देना। और लेख भी ऐसा ही था जिसपे कुछ सोचना पड़े, सच्ची स्वतंत्रता, बाहर वालों की दृष्टि से लिखना था। मैं बैठा, बाबा का आह्वान किया और लेख फटाफट पूरा हो गया, और पूरा होते ही वहां से फोन आया कि आ जाओ। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाबा की शक्तियां कैसे हमारे साथ काम करती हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, हर समय बाबा की शक्तियां हमें सफलता दिलाती हैं। हम ये कभी नहीं भूलें, इसलिए न अपनी सेवाओं का अहम आए, न उसके पीछे कोई कामना। प्रभु देन और समर्पण, दो बहुत सुंदर चीजें हैं अपने जीवन को दिव्यता से भरने के लिए। अब एक छोटी बात पर और चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर बात है वो जीवन के लिए, जो गीत सुन के मैं आपको कहा, मुझे एक अनुभव याद आ गया। वो अनुभव ये 2 मिनट में सुना देता हूँ। एक कुमार जिसने MBA किया हुआ, अभी किया था पिछले साल, तो मुझे फोन किया, इंटरव्यू हो रहा है, एक बहुत बड़ी पोस्ट निकली है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसके लिए कॉल हुआ है, मुझे बुलाया गया है, मुझे ये लेना है, क्या करूं? तो मैंने उसे बताया, मैंने क्या बताया था वो तो मुझे याद नहीं था, अभी उसने आगे समाचार सुनाया मुझे क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो उसने कहा, आपने मुझे बताया था कि मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करना सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा सिलेक्शन निश्चित है, ये संकल्प रोज करना। मैंने उसे कहा था बड़ा सा बैज लगा के जाना, दिखाई दे उनको दूर से ही, वो छोटे वाला नहीं जो यहाँ बटन वाला, वो तो अपने को खुश करने के लिए होता है ना, केवल दिखाई दे दूसरे उन्हें। फिर मैंने उसे कहा कि तुम एक संकल्प कर लो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे आता है वही पूछेंगे। आपकी तरह वो भी हंसा था फोन पे कि ऐसा होता है क्या। मैंने कहा अब तुम करके देखो फिर बताना क्या होता है। मैंने कहा तुम भूल जाओ सिलेक्शन हो या ना हो, तुम मस्ती से जाना निर्भय होकर, और ये संकल्प कर दो मेरा सिलेक्शन होगा ही, जैसे हो चुका है इस नशे से पहुंचना। गया वो बैज लगा के ठाट के साथ, 2 बुजुर्ग बैठे थे इंटरव्यू लेने वाले, पहली दृष्टि उनकी बैज पर गई, यही मेरा लक्ष्य था बैज लगवाने का। उन्होंने जाते ही पूछा उससे, बेटा तुम मेडिटेशन करते हो क्या? देखो कहाँ चला गया इंटरव्यू, अब आप सुनो। इसने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा हमें कराओगे? और इसने 20 मिनट कमेंट्री देकर उन्हें मेडिटेशन कराया, और वो हाथ ऐसे करके आंख बंद करके सीधे बैठ गए ऐसे। 20 मिनट पूरे हो गए, ये कह रहा सर मेडिटेशन पूरा हो गया, वो बंद करके बैठे आंखें। 3 बार इसको बोलना पड़ा सर पूरा हो गया, सर पूरा हो गया। उन्होंने आंख खोली, बहुत अच्छा। फिर कहा, वो बहुत खुश हो गए, और भी कुछ जानते हो? तो ये गीत बहुत अच्छे गाता, आजकल पब्लिक प्रोग्राम में देने लगा है, युग रतन नाम है रायपुर की तरफ का, बहुत अच्छे गीत गाता है। एक गीत है उसमें पधारो शिव साजन कुछ ऐसा, बहुत अच्छा गाया, रिकॉर्ड हुआ है। तो इसने कहा सर मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ, तो कहा सुना दो एक। तो उसने ये गीत सुना दिया जो 9:30 बजे बजा ना, प्रेम से बस दोगली, बहुत सुंदर गीत है ना, और वो बहुत सुंदर गाता है। वो फिर ध्यान मगन, आंख बंद की और बैठे हैं, गीत पूरा हो गया, फिर ये कह रहा सर पूरा हो गया गीत का, फिर मुझे 3 बार बोलना पड़ा कि सर पूरा हो गया। तब उन्होंने आंख खोली और कहा बहुत अच्छा है, वहीं अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी मिल गई, MBA किया हुआ इसने, बड़ा खुश। अभी सुना रहा था, अभी स्टर्न में बाबा से मिलने आया। तो ये कहानी क्यों सुनाई मैंने आपको, हंसाने के लिए नहीं, केवल पहली मुरली की वो बात फिर से आपको याद दिला दूं। बाबा ने कहा तुम्हारे पास शक्ति है, बोलो आगे, हर संकल्प को पूरा करने की, छाप दें आप अपने अंदर इसको, निराश न हो कभी भी, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं और उनके पास बहुत ज्यादा हैं जो मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हैं, जो उस नशे में आ जाते हैं, और उनके पास और ज्यादा हैं जो जितना योगयुक्त रहते हैं। सर्वशक्तिवान को अपनी छत्र छाया जिसने बना लिया, उनसे अधिक शक्तिशाली संसार में और कोई नहीं। तो जितनी शक्तियां हमारी बढ़ेंगी उतने हमारे संकल्प सिद्ध होंगे, काम करेंगे। बस ये सिद्धांत सभी को याद रखना है, जितना हम व्यर्थ से खुद को मुक्त करेंगे, इन अच्छे स्वमानों में रहेंगे और बाबा से योग युक्त, समझ लें हमारे संकल्प काम करते रहेंगे। दूसरी बात भी याद दिला दूं इसी सीजन की, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओ तो, बोलो तो, श्रेष्ठ संकल्पों की कमाल देखो। बहुत सुंदर ये रहस्य हैं संपूर्ण सृष्टि के, ये संपूर्ण रचना के रहस्य हैं ये, कि हम जो आधार मूर्त हैं, हम जो महान आत्माएं हैं, हमारे संकल्पों से ही सृष्टि चलती है। लेकिन किनके संकल्पों से, जो व्यर्थ से मुक्त, जो श्रेष्ठ स्वमानधारी, जो योग युक्त, इसमें ही आ गई प्योरिटी। बहुत इन चीजों पर हम बहुत ध्यान दें। तो फिर से मैं एक अभ्यास आपको करा देना चाहता हूं, रोज सवेरे, कल से ही आप सब करेंगे, रोज सवेरे जब हमारी आंख खुलती है, माताएं भी ध्यान से सुन लें, जिन्हें नींद आ रही वो जग जाए, जगाओ इनको भी, हाँ सुन लो ध्यान से, अब ध्यान से सुन लो, नींद से नींद को भगाने के लिए भी संकल्प कर सकते हैं। उठते ही पहला संकल्प हमारे जीवन का निर्माण करता है, जिनको बहुत नींद आती है ना, उठते ही संकल्प करना, बाबा आपने मुझे निद्रा जीवित बना दिया है, भले ही नींद आ रही हो, नींद में सोच लेना बाबा मैं निद्रा जीत हूँ, मैं निद्रा जीत हूँ, कई बार संकल्प करना, अंतर मन इसे स्वीकार कर लेगा। कईयों को नींद आती है ज्यादा, रात को बिस्तर पे जाएंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में बैठेंगे फटाफट नींद आएगी। इसके कुछ सूक्ष्म रहस्य होते हैं इसके पीछे, बताना नहीं चाहूंगा, माताओं को बुरा लगेगा, एक दो सो गई थी इसलिए बताएंगे नहीं इस रहस्य को, आप स्वयं समझ लें। ईश्वरीय सुख हमें प्राप्त करना है ना योग में, अगर हमें नींद आ गई तो वो सुख हमारा चला गया, और जिनको नींद आती है वो उनके वश हो जाती है आत्मा, वो चाहते नहीं है कि नींद आए पर आ जाती है, इससे अपने को मुक्त करेंगे। तो रोज सवेरे उठते ही पहला संकल्प आप वो करें जो आप चाहते हैं। आप ये बिल्कुल न सोचना कि ब्रश कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जलूं योग में। उठते ही प्रारंभ कर दो। आंख खुली रही है, अभी सबसे अच्छा अनुभव होगा। आंख खुली ही रही है और आप संकल्प कर दो, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ। संकल्प करो, है ना चरित्रवान सब? पवित्र आत्माएं ही तो सबसे ज्यादा चरित्रवान है। जिनको भगवान ने ज्ञान धन दिया है वही तो सबसे ज्यादा धनवान है। यह न सोचना हमारे पास धन नहीं है, मैं बहुत धनवान हूँ। सवेरे 10 मिनट जो संकल्प आप करेंगे वही पाएंगे। अंडरलाइन कर दो, नोट कर लो, बुद्धि में भी कागज पे भी। सवेरे उठते ही बहुत खुले दिल से, खुले दिल से कहने का अर्थ है उसे स्वीकार करते हुए, मैं ये हूँ। रिजेक्ट न करे मन, ऐसे नहीं कहे मैं बहुत धनवान हूँ और दिल से निकल ही न रहा हो, जेब में तो पैसे नहीं, कहाँ धनवान हो, ये नहीं काम करेगा। आप बिल्कुल खुले दिल से, ओपन माइंड से स्वीकार करते हुए, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, मेरे जैसा खुश नसीब, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, है या नहीं? क्या समझती माताएं है? जिन्हें भगवान मिला हो उससे ज्यादा भाग्यवान कोई हो सकते हैं? खुले दिल से संकल्प करना, मैं बहुत सुखी हूँ, ये नहीं बहुत दुखी हूँ, अंदर में चलता न रहे, परिवार वालों ने तो बहुत दुखी कर दिया है मुझे, बाबा आपने आकर बहुत सुख दिया। ऐसे भी दूर ध्यान करते हैं ना, बाबा मेरी बहू ने मुझे बहुत तंग कर दिया, आपने आकर मुझे बहुत सुख दिया। इसमें आधा हो गया, दुख को भी याद कर लिया, सुख को भी याद कर, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। 3 युग संपूर्ण सुख प्राप्त हुआ है हम आत्माओं को, अब फिर से सुख हमारे द्वार पर आ गया है। आपको सफलता नहीं मिलती है, संकल्प करना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके जीवन में विघ्न आते हैं, उठते ही आप ये करके देखें। जिनके जीवन में विघ्न आ रहे हो, कोई समस्या सामने हो, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो, 7 बार संकल्प कर देना, मेरा जीवन निर्विघ्न है, बाबा आपने मुझे विघ्न विनाशक बना दिया है, मैं विघ्न विनाशक के वरदान से संपन्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ। देखना एक ही दिन में चमत्कार दिखाई देगा। तो ये हमारे अंतर मन की शक्ति है, और रात को इसी शक्ति का प्रयोग करना है बीमारियों को ठीक करने के लिए। सभी को ये जान लेना चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतर मन में, हमारे मन में, सीधी सी भाषा बोले, सभी रोगों को ठीक करने की शक्ति भी है। मन से ही रोग उत्पन्न हुए हैं। कितनों को देखा होगा आपने भी, मन में टेंशन है, दुखी है, अंग अंग दर्द कर रहा है, मन खुश हुआ, मन शांत हुआ, बीमारी शांत हो गई। बहुतों के अनुभव है ये। इसलिए हमारे मन में ही शक्ति है शरीर को चलाने की, शरीर को ठीक रखने की। तो सोने से पहले जब आपको नींद आ रही हो तब अंतर मन जग जाता है, आप संकल्प करना, मैं निरोग हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। जो बीमारी आ गई हो ना, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। ब्राह्मण बच्चे ये गलती करते हैं, बाबा मुझे इस बीमारी से मुक्त करो ना, करते हैं सभी। बाबा क्या उत्तर देते हैं? मुरलियों में उत्तर दे दिए, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने थोड़ा ही आया हूँ, खाना ज्यादा खुद खाया है, पेट भारी हो गया, अब ठीक करे बाबा। डॉक्टर किस लिए, हॉस्पिटल किस लिए खुला, कम खाते ना, हंसेगा ना बाबा। ब्रह्मा बाबा का रूढ़िया नहीं करते थे शिव बाबा से, हम हंसी मजाक में बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो ना, बाबा कहता है तुम्हारा कर्म भोग है तुम जानो, मैं इसलिए थोड़ा ही आया हूँ। तो वो शक्ति हमारे ही पास है, अंतर मन को कमांड दो रात को सोते समय। कोई बीमारी छोटी मोटी भी आ गई हो ना, छोटी मोटी चोट लग गई हो, कुछ घाव हो गया, कहो एक हफ्ते में मेरा घाव पूरी तरह ठीक हो गया है, हो जाएगा, संकल्प पॉजिटिव कर दो, परिणाम सुंदर मिलने लगेंगे। ठीक है, पूछ लेना बाद में पूछ लेना। तो हमारे पास शक्तियां हैं, समझ गए ना, हर चीज की शक्ति। शरीर को चलाने के लिए तो आत्मा ही है ना, आत्मा में मन, तो मन में ही शक्ति है शरीर को चलाने की, शरीर को निरोग रखने की और बहुत सारे कार्य करने की। आप ये रहस्य जान लें, जो संकल्प कोई भी मनुष्य करता है उसकी तरंगें सारी प्रकृति में पहुंचती हैं, किरणें पहुंचती हैं, प्रकृति से मिलकर वो कुछ निर्माण करती हैं और वापिस उस मनुष्य को प्रदान कर देती हैं। इस सिद्धांत के आधार से ये संसार चल रहा है, प्रकृति और पुरुष के मिलन से, प्रकृति और मन के संकल्पों के मिलन से। इसको सभी बहुत ध्यान देंगे तो जो कुछ हमने अपना संसार बनाया है वो किसकी रचना है, हमारी अपनी। हमने दुख भरा संसार बनाया है तो उसके जिम्मेदार हम, हमने प्रेम भरा संसार अपना बनाया है उसके जिम्मेदार हम, हमने अपना संसार सुखी बना दिया है उसके जिम्मेदार हम। संकल्पों को चेंज करें तो हमारा संसार बदल जाएगा। ठीक है, कल से इसका प्रयोग करें सभी। ओम शांति।